ओम शांति। प्यारे बाबा, फिर आगे क्या और आगे लगती है मुरली बड़ी प्यारी। मुरली सुनते ऐसे मन नाचता है, और मुरली सुनते दिल से ऐसा आवाज निकलता है कि प्यारे बाबा, मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली बड़ी प्यारी और न्यारी। क्या क्या उसमें न्यारापन है और क्या क्या उसमें प्यारापन है। मुरली प्यारी क्यों लगती है, आज की विषय भी यही है। बताई थी आशा बहन ने आज की विषय? नहीं, आज की विषय है मुरली, ब्राह्मण जीवन का आधार। हाँ, क्या है? ब्राह्मण जीवन की पढ़ाई है मुरली। आवाज नहीं आता है? सबके कान सामने देखो ना, तो कैसे लगेंगे कभी कभी ऐसे लगता है, बोलो क्या लगता होगा, जैसे वो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं नमाज, तो उसका क्या कैसा दिखाई पड़ता है तो जब सबके कांध नीचे होते हैं ना ऐसे करने में, तो सब ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं अच्छा, ब्राह्मण जीवन का आधार यह मुरली। और ब्राह्मण जीवन की पढ़ाई ये मुरली है, ब्राह्मण जीवन के खुशी की खुराक है। आवाज ही नहीं है, लिखने में है ब्राह्मण जीवन के खुशी। जब तक लिखो ही लिखो तब तक आगे चली जाती है रफ्तार, है तो जवाब देने में रह जाता है, परंतु जब पूछा जाता है ना, तो खुशी की खुराक तो खुशी से जवाब दो। तो हमें ये महसूस हो कि बरोबर ये खुशी है आपकी, जैसी बात वैसा स्वरूप, वैसे बोल वैसा चेहरा, वैसी वो झलक। जब ऐसे नजर आए तब माना जाता है बरोबर जो बोलते हैं वो ठीक है, और नहीं तो अगर बोलेंगे भी परंतु अगर वो झलक और वो रुहाब नजर नहीं आएगा तो क्या माना जाएगा। केवल समझ मात्र है लेकिन उसका अनुभव कम है। परंतु मुरली के संबंध में मैं ये तो नहीं कहती कि अनुभव नहीं है, लेकिन मुरली को इतना ही आवश्यक माने, यही हमारी खुशी की खुराक है, यही हमारा आत्मा का भोजन है, यही हमारी संपत्ति है। जैसे कहा जाता है ना ज्ञान रतन, तो ज्ञान रतन हमारी संपत्ति है आत्मा की, तो ज्ञान रतन क्या है, मुरली ही है ना ज्ञान रतन। तो ऐसा हमें महसूस हो कि मुरली ही हमारे ज्ञान का खजाना है, संपत्ति है। जैसे संपत्ति के सिवाय मनुष्य कुछ कर सकता, और संपत्ति कम है या नहीं है तो वो कैसा लगता है, बेगर लगता है। अगर मुझे आत्मा में ये ज्ञान का खजाना भरपूर नहीं है, इतना नहीं जमा है, तो आत्मा कैसी होंगी, गरीब। अर्थात बाप से बाप को पूरा न पहचानने वाली, जानती पर पूरी पहचान नहीं। बाप के पूरे पहचान का आधार भी मुरली है, बाप के शक्ति को अनुभव करने का आधार भी मुरली है। इतना मुरली के ऊपर हमारा ध्यान अथवा इतना हम मुरली को अपने के अपने लिए आवश्यक माने, कभी भी हम मुरली मिस नहीं कर सकते। मिस तो क्या, परंतु जब हम सुनेंगे ना तो वो मुरली जैसे हम सुनते जाएंगे वैसे हमारा अंदर मन नाचता रहेगा, माना खुशी में झूमता रहेगा। जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे खुशी हमारे अंदर उबर पड़ेगी और हम अपने को इतना खुशी में महसूस करेंगे। जैसे जब बहुत खुशी होती है तो क्या होता है, दिल करता है खुशी में ना, अपने आप जब खुशी में आप बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे नाच रहे हैं, बोली ऐसे लगेगा जैसे नाच रहे हैं। तो जब मुरली का महत्व हमारे पास होता है और इतने महत्व से जब हम मुरली सुनते हैं तो आत्मा बड़ी तृप्त हो जाती है, आत्मा के अंदर बड़ी खुशी रहती है और उस खुशी में जैसे कि सदा नाचते ही रहते हैं। अब हम अपने आप से पूछें, मुरली हम आवश्यक समझते हैं, ये तो सब समझते हैं, परंतु इतना मुरली का महत्व हमारे पास है, हम इतने महत्व से मुरली को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसको फिर अगर इतना महत्व है हमारे पास मुरली का तो फिर मुरली हमारे पास धारण बड़ी सहज हो जाएगी। मुरली का सदा हमारे पास महत्व बना रहे उसके लिए कौन सी मुख्य बात हमारे बुद्धि में रहे, पराने वाला भगवान है। और बोलो, उठ के बोलो पीछे वाले, मुरली माना बाबा की श्रीमत। और बोलो, मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। अच्छा, और बोलो, मुरली से 21 जन्मों की कमाई है क्योंकि मुरली हमारी पढ़ाई है जी। सुनने में आया, साजन का पत्र है, हम तो उसको पढ़ाई मानते हैं। हाँ, वो तो कभी लहर में आके ऐसे कुछ भी कहो वो अलग बात है, लेकिन कायदे मुजब और उसको वैसे सही शब्दों में हम ये कहें कि मुरली हमारी पढ़ाई है क्योंकि मुरली से ही हमारी जीवन बनती है। वास्तव में देखा जाए कि मुरली से ही हमको बाप की पहचान मिलती है। बाप ज्ञान का सागर है, ये हमें मुरली ही अनुभव कराती है। बाप रचयिता है और रचना क्या है उसकी सारी आदि मध्य अंत की नॉलेज ये मुरली के द्वारा ही तो हमें मिली है। तो मुरली मानो हमारी पढ़ाई है, जीवन का पहला आधार है जिसके आधार पर हमारी ये ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ती है। और जो मैंने पहले प्रश्न पूछा कि ये इतना महत्व सदा हमारे बुद्धि में रहे मुरली के लिए, उसके लिए पहली बात हमारे बुद्धि में ये रहे जो बताया भी किन्होंने कि ये किसके महावाक्य हैं, मुरली भगवानों वाच्य है। जब भगवानों वाच्य हम समझते हैं तो भगवानों वाच्य तो कितना महानता से और कितने महत्व से उसको सुना जाता है। भगवानों वाच्य कोई मिस करेगा? अब अभी सब जो भक्ति मारे के हिसाब से अगर भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाए, भक्ति मारे के मान्यता अनुसार समझो वो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और साक्षात्कार में उनको एक पल भर के लिए साक्षात्कार होता है, केवल दो शब्द वरदान के कितनी भावना से सुनते हैं और कितना सदा याद रखते हैं, और उसमें जो भी दो महावाक्य सुना वो मानो उनके जीवन के लिए एक तावीज हो जाता है। ऐसे ही भले ये विस्तार है, बाप ज्ञान का सागर है इसलिए हमें इतना विस्तार बताता ही जाता है सब कुछ, जिसके अंदर विश्व की हिस्ट्री आ जाती है। माना मुरली जो हम उसको पढ़ाई कहते हैं ना, तो जैसे पढ़ाई के अंदर सब सब्जेक्ट्स हैं। कौन सी पढ़ाई में सब्जेक्ट आती है? पढ़ाई के अंदर, लौकिक पढ़ाई के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आती है? सभी सभी बोलेंगे तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक बोले, लौकिक पढ़ाई में क्या क्या सब्जेक्ट्स होती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और क्या क्या, साइंस और लैंग्वेज और भाषा हुई ना, और क्या क्या आते हैं पढ़ने वाली बता, इकोनॉमिक्स और क्या होता है? पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट्स देखो है हमारी मुरली के अंदर, उस प्रकार की सब बातें आती है। भले उसी रीति हमारी अलग अलग नहीं की हुई है, लेकिन भगवानों वाचक के अंदर विज्ञान भी आता है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, आती है ना? है ना, हमारे चित्रों पर लिखा हुआ हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये झाड़ और गोले, त्रिमूर्ति, रचता और रचना के आदि मध्यान की, और मैथमेटिक्स भी है। कौन से है मैथमेटिक्स? 5000 वर्ष का ये कल्प है, वो हिस्ट्री में भी माना जाएगा और इसमें भी माना जाएगा। इसी प्रकार लैंग्वेज तो है ही है, लैंग्वेज के सिवाय तो कुछ काम नहीं चलता है। और क्या क्या आता है? अधिकतर देखें तो जो पढ़ाई में जो कुछ पढ़ाया जाता है, हाँ, इसमें ज्ञान के रीति से है, लेकिन वो दुनिया के रीति से है और ये बेहद विश्व के संबंध में आता है। क्योंकि रचता बाप बेहद का है तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बेहद की बताते हैं, किन्होंने राज किया, कब किया, उस समय क्या क्या था, ये आता है ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर। समय कौन सा, मौसम कौन सी, उस समय का वातावरण क्या। तो अगर देखा जाए कि इस प्रकार से जैसे पढ़ाई है वैसे हमारी ये सारी पढ़ाई है, अगर हम इसको पूरा ध्यान से पढ़ते हैं, तो जैसे पढ़ाई को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो सब बातें हमारे बुद्धि में बैठती है और हम अपन को समझते हैं, हम इतने नॉलेजफुल बन गए, माना ये बातें हम सीख गए, हमें हिस्ट्री का भी पता है, इससे पहले किसका राज्य था, कैसा था, सब हमें पता है, एक अंदर में भी तसली होती है ना। वैसे अगर हम मुरली को अच्छी रीति से अध्ययन करते हैं तो ये सारी नॉलेज जब हमारी बुद्धि में बैठती है तब हमें नशा रहता है कि सचमुच हम बेहद के मालिक हैं, बेहद हिस्ट्री का हमें पता है, सारी विश्व और वो भी विश्व की आदि और अंत। ये हिस्ट्री तो हद की होती है, कुछ वर्षों की होती है, अभी कभी से लेकर देखो तो सत्युग त्रेता की हिस्ट्री नहीं है अगर देखा जाए, उसके बाद की ही हिस्ट्री आती है, आर्य और आर्य से ही हिस्ट्री चलती है, उसके पहले देवताएं थे उसकी हिस्ट्री नहीं है। और हमारी हिस्ट्री के अंदर पूरी जब से सृष्टि की शुरुआत है और जब अंत होती है, फिर कैसे रिपीट होती है, वो भी हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो इतना समझे तो हमें इतना नशा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि नहीं, लौकिक पढ़ाई के अंदर बुद्धि विशाल होती है और इस पढ़ाई में बुद्धि थोड़ी डल रह जाती है, इतनी विशाल नहीं होती। पर हम लोगों की बुद्धि किस में विशाल हुई? हम लोग तो पढ़े नहीं ना दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत पढ़े, लेकिन बाकी तो पूरी पढ़ाई ये पढ़ाई पूरी पढ़े। पूरी पढ़ने के कारण हमारी बुद्धि इसी पढ़ाई से इतनी विशाल हुई और हम समझते हैं कि बरोबर हमें बेहद विश्व का मालूम है, जो आज की विश्व तो उसके आगे क्या हुई, बहुत थोड़ा सा पीरियड हुआ ना, कलयुग का भी पूरा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा, और ये तो सत्युग से लेकर के कलयुग तक। तो इससे नशा भी रहता है। जैसे लौकिक पढ़ाई, जो जो जितनी जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, जितना स्टैंडर्ड आगे पढ़ते हैं, उसको नशा रहता है ना। तो ये जितनी पढ़ाई हमारी बुद्धि में अच्छी रीत बैठती है, तो ऑटोमेटिकली हमें वो नशा रहता है कि हमें कि हम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और जिसका स्टेटस तो आप लोगों ने भी बताया कि कितना मिलता है, 21 जन्मों के लिए विश्व की बातचीत मिलती है, मिलेंगी तो उसको ना जो पास विद ऑनर्स होंगे। बातचीत के मालिक तो वही बनेंगे ना, पर मिलती तो है ना, इस पढ़ाई की रिजल्ट ये है, लेकिन वो ले वो सकेंगे जो इस पढ़ाई में पूरे पास होंगे, जो इतना नशे में रहेंगे, जो इतनी क्वालिफिकेशंस धारण करेंगे, जो उन क्वालिफिकेशन से फिर चलेंगे, तभी तो उनको इतनी बातचीत मिलेंगी। तो ये हमारी पूरी पढ़ाई है, ये हमारे बुद्धि में पूर्ण रूप से बैठ जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात भगवानो वाच्य, भगवान के आगे उससे ऊंचा तो शब्द और कोई है ही नहीं ना। भगवान की महिमा गाओ, हाँ वो सारी महिमा हमारे बुद्धि के अंदर रहनी चाहिए कि ये हम किसके महावाक्य सुन रहे हैं, एक उसी रीति से किसके महावाक्य सुन रहे हैं, और दूसरा ये कितनी बेहद की पढ़ाई है जिससे कितनी हमें बेहद की प्राप्ति होती है। अगर इस प्रकार से हमारे बुद्धि में बैठा हुआ है तो मैं समझती हूँ मुरली सुनते समय कभी भी हमारा ध्यान दूसरे तरफ नहीं जा सकता। परंतु समय समय पर हम समझते हैं भगवान वाच्य तो हम सुनते ही आए हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वारिस बन गए, मास्टर ज्ञान सागर बन गए हैं, ज्ञान का खजाना हमारे पास भी है। तो जब सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है ये तो हमारी बातें सुनी हुई है, क्योंकि बार बार रिपीट होती है। लेकिन बार बार बाबा रिपीट क्यों करता है? माना हम अजन उस पढ़ाई में पक्के नहीं हुए हैं, पढ़ाई हमारे हम उस पढ़ाई में अभी तक कच्चे हैं, तभी तो बार बार बाबा हमें वही बात पढ़ाता है। जब बाबा हमें फिर वही पढ़ाता है, इसीलिए कि हम उसमें कच्चे हैं, और हम फिर वही पढ़ाई समझ करके अगर अटेंशन न देंगे तो हम उसमें पढ़कर पास होंगे या कच्चे ही रह जाएंगे। कच्चे और पक्के का भाव हमारा क्या रहेगा? हाँ, पक्का माना हमारे अंदर वो सदा नशा बना नशा रहेगा, और कच्चा माना नशा हमारे में नहीं रहेगा। कभी चढ़ाएंगे नशा तो थोड़ा बहुत चढ़ जाएगा, लेकिन स्थाई रूप में नहीं रहेगा। अगर वो नशा हमारे में नहीं रहेगा तो उससे और क्या नुकसान होगा? हमारे में वो क्वालिफिकेशंस नहीं आएंगे, हम इतना एबल नहीं बन सकेंगे। और जितना हम मुरली पर ध्यान देंगे, जितना हम उसको अच्छी रीत से समझने की कोशिश करेंगे, जितनी हमारे बुद्धि में अच्छी रीत से बैठेंगी, उतना हम उसमें एबल बनेंगे, अर्थात वो हमारे में धारणा सहज बनती जाएगी। अर्थात जो इस पढ़ाई की क्वालिफिकेशंस है, वो क्वालिफिकेशंस हमारे में आ जाएंगी। अगर वो क्वालिफिकेशंस हमारे में आ गई तो हम स्टेटस के लायक बन जाएंगे ना। जब तक हमारे में वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, क्वालिफिकेशंस कौन सी है? हमें ये रहे कि हम बेहद के मालिक हैं। वो बेहद का नशा और वो बेहद की पूरी नॉलेज हमारी बुद्धि में ऐसी भरी हुई हो जैसे अपनी नॉलेज कैसी होती है? जब हम मालिक हैं तो मालिक को तो अपनी सारी रचना का स्वतः ही मालूम होता है ना। इस प्रकार से हमारे बुद्धि के अंदर वो भरा रहे, जिसको फिर दूसरे शब्दों में, ज्ञान के शब्दों में कहें कि जो बाबा ज्ञान विस्तार से हम बच्चों को सुनाता है, वो विस्तार हमारी बुद्धि के अंदर पूरा समझ में आए, हर बात हमारी बुद्धि में पूरी क्लियर हो, तब हमें वो पूरा नशा रह सकता है। और नशा केवल इतना ही नहीं कि पढ़ाई हमारी बुद्धि में है, लेकिन पढ़ाई और पढ़ाने वाला, और पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो साथ में हमारा नशा कौन सा हो गया कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान के हम बच्चे भी हैं और ऊंचे ते ऊंचा भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, जिससे हमें ऊंचे ते ऊंचा स्टेटस मिलता है। ये पहली बात सदा हमारे बुद्धि में रहे तो हमारा मुरली पर बड़ा ध्यान रहेगा। दूसरा, मुरली को धारण करने की सहज विधि। मुरली हमारी अच्छी रीत समझ में आ जाए उसकी सहज विधि, विचार सागर मंथन करना और ध्यान से मुरली पढ़ना। अच्छा, विचार सागर मंथन करना हम इसको नहीं कहेंगे बल्कि मनन करना। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मनन करना और मंथन करना, मनन करना अर्थात जो हम सुनते हैं उसको बार बार मन के अंदर दोहराना, इसलिए कि उसके अंदर कौन सी शक्ति, माना भगवानों वाच्य है तो भगवान के हर महावाक्य के अंदर कुछ विशेष भाव भरे हुए होते हैं। भगवान के हर महावाक्य के अंदर विशेष भाव के साथ विशेष शक्ति भरी हुई होती है। उन महावाक्यों के अंदर विशेष प्राप्ति समाई हुई होती है। तो मनन करना अर्थात भगवान के महावाक्यों की भाव को समझना, उनकी प्राप्ति को जानना और उस शक्ति को पहचानना, इसको कहा जाएगा मनन करना। मनन करना केवल इतना ही नहीं कि हमने दोहराया, पर दोहराना किस प्रकार से है, वो महावाक्य याद करते लेकिन याद करने के साथ साथ उसके उसका कितना महत्व है अर्थात उसमें भगवान के भाव क्या भरे हुए हैं, उन महावाक्यों से प्राप्ति हमें क्या है अथवा इससे हम औरों को किस प्रकार प्राप्ति करा सकते हैं, इससे हम किस किस प्रकार से शक्ति को अपने में जागृत पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम मनन करते हैं तो हमारे अंदर में भी उन महावाक्यों का महत्व अपने आप जागृत होता है, हमें खुद पता लगता है कि इतने महावाक्य इतने महत्वपूर्ण हैं, उसके अंदर इतनी प्राप्ति समाई हुई है। जब ये पता चल जाता है तो और भी हमारा आगे उसमें अटेंशन जाता है। अब उस प्राप्ति को कैसे हम समझें, उसका भाव हम कैसे अनुभव करें अथवा शक्ति को कैसे अनुभव करें, वो हम कैसे करेंगे बताओ हाँ? कैसे करेंगे उसका अनुभव, जिससे हमें भाव का पता चले अथवा प्राप्ति का अनुभव हो, वो हम कैसे करेंगे हाँ? स्वरूप में कैसे लाएंगे मिसला हाँ? बार बार मुरली को पढ़ना तो ठीक है, लेकिन जो बात बाबा कहते हैं उसको मैंने बताया ना, मनन करके और उसका थोड़ा एकांत में उसको रियलाइज करे। शुरू की बात करती हूँ, शुरू शुरू में अगर हम इस प्रकार ध्यान देते हैं मुरली पर तो सदा के लिए ये मेरा अभ्यास हो जाता है। फिर चाहे हम एकांत में बैठें या ना बैठें, चलते हुए भी हम उसको एकांत का रूप दे करके और उसका अनुभव कर लेंगे। अगर हम शुरू में ऐसा अटेंशन मुरली पर देते हैं तो, और बाबा ने हम बच्चों को शुरू शुरू में जब हम कराची में यज्ञ में रहते थे तब हम लोग मुरली को इतना ध्यान से सुनते थे, इतना ध्यान से पढ़ते थे। उस दिन भी मैंने बताया ना, चार चार पांच पांच बार हम लोग एक मुरली पढ़ते थे। आप लोग तो समझेंगे इतना पढ़ने की क्या जरूरत, अभी एक या दो बार पढ़ी, एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको तो याद पड़ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमको याद नहीं पड़ती थी, छोटेपन में तो हमको भी याद पड़ती थी ना, लेकिन याद ही शब्द याद रहे इतने तक ही नहीं, परंतु जो बताया ना कैसे भगवान का भाव इसमें कैसा भरा हुआ है, हर शब्दों से भगवान का अनुभव हो, ये हम लोगों के बुद्धि में रहता था। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है तो हमें खुद महसूस हो कितनी ऊंची बात है जो बात कोई ने नहीं सुनाई। जैसे हम अभी कहते हैं ना, परमात्मा का परिचय, बाप का परिचय कोई ने दिया, कोई ने समझाया? आत्मा का इतना स्पष्ट ज्ञान कोई ने बताया? तो हम कहते हैं ना, बाप के सिवा कोई नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो अभी जबकि आप लोगों के सामने इतना स्पष्ट ज्ञान हम दे रहे हैं, हमारे होते इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं था। हमारे होते हमें उसको मनन करके अनुभव करते थे और तब हमारे अंदर से आवाज निकलता था, अरे ऐसी बात तो कोई ने नहीं बताई, ये बात तो भगवान के सिवा कोई बता ही नहीं सकता। दिल कहे अंदर से कि ये बात तो भगवान ने बताई है और कोई बता ही नहीं सकता। माना आत्मा ने ये रियलाइज किया कि भगवान की शक्ति क्या है और वो कितनी ऊंची नॉलेज हमें दे रहे, जिससे मानो कि जैसे जैसे ये नॉलेज हमारे पास स्पष्ट होती जाती है, वैसे वैसे अपने से अज्ञान, जो अंधकार माना, अज्ञान को अंधकार कहा जाता है ना, वो हटता जाता है और ज्ञान का प्रकाश इमर्ज होता जाता है और आत्मा प्रकाश रूप बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात, मुरली को सहज समझने और सहज धारण करने की विधि क्या? अधिकतर क्या होता है, आप लोग जब योग पूरा हुआ, फटाफट डायरी उठाई, खोली डायरी, बस अभी सुनेंगे और लिखेंगे। जो लिंक रहा आपके योग का, वो फट से नीचे आता है पारा या नहीं? थोड़ा ये ध्यान रहे, चलो योग के बाद मुरली तो सुननी है, लेकिन उस भाव में हम नीचे उतरे। अब भगवान उवाच है हमारे सामने, तो साकार बाबा रहे, सामने ही रहे। और बाबा कभी कभी ऐसे ही बोलते थे, देखो बाप आया है, और हम तो सामने दे, अभी बाप आया है, अभी हमको क्या सुनाएगा? फौरन वो बुद्धि में आएगा तो नजर बाप के तरफ जाएंगी, नजर डायरी के तरफ नहीं जाएंगे। तो नजर वहां जानी चाहिए। लिखना है ये बात ठीक है, अभी तो लिखने में पहले तो ओम शांति आएगा, बाबा बोलेगा, या अभी तो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, तब तक तो आप डायरी खोल सकते हैं, लिख सकते हैं। एकदम से योग पूरा हो और फटाफट अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं, देखो इतना योग का वातावरण अच्छा होता है, और एकदम अर्जुन माइक आगे आएंगा ही, फटाफट सब कॉपी खोलने लग जाएंगे कि मिस न हो जाए। लेकिन बुद्धि से मिस न हो, वो स्वरूप हमारा इमर्ज रहे, उस शक्ति से हम बैठ करके सुने, तो वो शक्तिशाली महावाक्य हमारे अंदर जाते हैं, और नहीं तो केवल लिखने मात्र हो जाते। अच्छा, व्यक्त बाप दादा की बात निकली है तो इसमें मैं दो बातें थोड़ी ये बता देती हूँ। अधिकतर अव्यक्त बाप दादा की मुरली और साकार की मुरली, अधिकतर हम सबको वर्तमान समय के अनुसार अपने जीवन के संबंध के अनुसार, ऐसा कहें अपने में अपनी कमजोरियों के अनुसार, हमें अव्यक्त बाप दादा की मुरली बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें बाबा धारणा पर बताते हैं और एक ही लिंक से और कुछ शब्दों में, कुछ स्लोगन में, तो याद करना भी सहज हो जाता है, सुनने में भी मजा आता है, और एक ही धारणा की बात होती है। और साकार की मुरली ऐसे लगती है, ये ज्ञान तो सुना हुआ है, बड़ा सहज है, क्योंकि अभी तो कोर्स कराना भी हमें आ गया, मुरली पढ़ के भी हम सुनाते हैं, भाषण भी अच्छे अच्छे करते हैं, तो ज्ञान तो है ही है बुद्धि में। इसलिए जरा ये कंट्रास्ट अपने पास थोड़ा थोड़ा है ना, ऐसा है या नहीं है? है ऐसा। परंतु ये बात है कि देखो, जैसे पढ़ाई के अंदर लास्ट में रिवीजन कोर्स होता है, पहले पूरी पढ़ाई होती है, शुरू से लेकर के पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरा जो स्टैंडर्ड्स के बुक्स होते हैं। परंतु ये बात है कि देखो, जैसे पढ़ाई के अंदर लास्ट में रिवीजन कोर्स होता है, पहले पूरी पढ़ाई होती है, शुरू से लेकर के पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरा जो स्टैंडर्ड्स के बुक्स होते हैं उसके अंदर पढ़ते हैं, तो नॉलेज सारी शुरू से लेकर के पढ़ते हैं और लास्ट में थोड़ी थोड़ी मुख्य बातें खाली रिवाइज करते हैं। तो टोटल हमारी रिजल्ट तो जीवन की धारणा है, और अभी हम संपूर्णता के नजदीक पहुंच रहे हैं, इसलिए बाबा हमारा ध्यान उसी पर खींचते हैं। लेकिन वो संपूर्णता हमारे में आएंगी कैसे? धारणा भी जितनी हमारी पढ़ाई में बुद्धि होगी, जितनी बुद्धि में हमारी पढ़ाई होगी, उतनी तो हम धारणा बना सकेंगे, क्योंकि शक्ति हमारी किससे बनेंगी? धारणा के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। आत्मा में शक्ति है तो हम धारणा कर सकते हैं। अगर मेरे में वो शक्ति नहीं है, हम चाहते हैं इन बातों को छोड़ें, कमजोरियों को छोड़ें, अपने स्वभाव परिवर्तन करें, संस्कार मेरे परिवर्तन हो, पर नहीं कर सकते हैं, पुराना संस्कार मेरे से नहीं निकलता है। चाहते हैं, बाबा की मुरली याद करते हैं, दो चार दिन उस पर मनन करके उस पर चलते भी है, फिर इमर्ज हो जाता है। कारण पढ़ाई पर हमने शुरू से ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि शुरू से अगर हम पढ़ाई पढ़ते आते हैं, उसमें सब सब्जेक्ट्स आती है ना, तो सब सब्जेक्ट्स जमा हो करके जितनी जितनी पढ़ाई हमारी बुद्धि में है, तो हमारी बुद्धि उसमें परिवर्तन होती जाती ना, बुद्धि के अंदर वो पूरी नॉलेज भर जाती है। जब बुद्धि में पूरी नॉलेज भर गई तो पुराना बदल गया या ना। समझा मेरे भाव को? बात समझ में आई या नहीं? जब हम पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, जो जो पढ़ाई मेरे बुद्धि में बैठती जाएंगी, तो आगे की बातें मेरी भूलती जाएंगी ना, बदलती जाएंगी ना। और पढ़ाई पूरी हमारे बुद्धि में बैठेंगी तो बुद्धि हमारी शक्तिशाली होगी ना। जब बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, ज्ञान की शक्ति उसमें आएंगी, तब तो इतनी धारणा अपने में कर सकेंगी। इसलिए हमें इन्हीं बातों को इन दोनों रोल से समझना है कि वर्तमान समय के अनुसार हमारी रिजल्ट है, रिजल्ट हमारी क्या आनी चाहिए और कैसी हो वो बाबा हमें बताते हैं, व्यक्त बाबा, और उसमें जो जो हमारी कमजोरी है वो हमें निकालनी है। लेकिन कमजोरी सिवाय मर्जी व जन्म, हमारी बुद्धि से जब ये कॉन्शियस नहीं बदला है, हम किसके बच्चे हैं, हमें पढ़ाने वाला हमारी पढ़ाई क्या है, कितनी ऊंची पढ़ाई, जब तक हमें ये नशा नहीं है तब तक हमारी ऊंची धारणाएं बनेंगी कैसे? तो ये है पढ़ाई और ये है रिजल्ट। रिजल्ट आएंगी पढ़ाई के आधार से, इसलिए दोनों में हमें ध्यान रखना है कि जितनी हम पढ़ाई बुद्धि में धारण करते जाएं, उतनी हमारे अंदर वो शक्ति आएगी, नशा रहेगा, नशा रहने से शक्ति आएगी और शक्ति होने से उन बातों को हम सहज धारण कर सकते। अगर शरीर में किसके कमजोरी है वो शक्तिशाली काम कर सकेगा? कमजोर शरीर शक्तिशाली काम कर सकेगा? जब तक उसके शरीर में शक्ति नहीं, तब तक तो वो शक्तिशाली काम कर ही नहीं सकते। तो संपूर्णता की धारणा कितनी ऊंची है, उसके लिए बुद्धि कितनी शुद्ध चाहिए, उसके लिए बुद्धि कितनी परिवर्तन चाहिए, उसके लिए बुद्धि के अंदर कितनी दिव्यता चाहिए। अब वो दिव्यता अगर हमने भरी नहीं और हम संपूर्णता की बातें लक्ष्य लेकर के अपन को आगे करते हैं, और फिर हमारे में क्या उस समय थोड़ा अनुभव होता है, फिर सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है? वो इसी कारण, क्योंकि हमने अपने बुद्धि को, अपने कॉन्शियस को परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए जितना हम पढ़ाई को नियम से धारण करते जाएंगे, माना नियम से पढ़ते रहें और उसी भावनाओं से हम उसको लेते जाएं, तो हम संपन्नता के नजदीक आएंगे। अर्थात जो इनकी धारणाएं हैं वो हमारे में आती जाएंगी, क्योंकि हमें नशा रहेगा हम कौन है। ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाने वाला है, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई है, तो हमारे अंदर भी इतनी ऊंचाइयां चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ते जाएंगे तो ऊंचाई हमारे में आती रहेंगी, और ऊंचाई आएंगी तो हम संपन्नता के नजदीक आते जाएंगे। संपन्नता के नजदीक आएंगे तो आखिरी नाम संपूर्ण बन ही जाएंगे। तो ये रिजल्ट बाबा हमें जो बताते हैं, संपूर्णता क्या है, कैसी कैसी हमारी जीवन है, क्या क्या हमारी शक्तियां हैं, ये संपूर्णता में हमें आना है। ये संपूर्ण जीवन हमारी है, लेकिन संपूर्ण बनने के लिए हमें अपनी बुद्धि को इतना दिव्य और शुद्ध बनाना है। दिव्य बुद्धि बनाने के लिए बुद्धि के अंदर इतनी दिव्यता की बातें चाहिए। तो जब नॉलेज हमारे बुद्धि के अंदर पूरी भर जाती है, तब हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है। और दिव्य बुद्धि हर बात को सहज ग्रहण भी कर लेती है, और ग्रहण करने से उसकी धारणा सहज बन जाती है। और इसके पहले मैंने बात कही कि बुद्धि को सहज धारण करने और समझने की विधि क्या है। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं, आजकल मुरली में आप लोगों को तो सब बनी बनाई चीजें मिल रही है। कौन सी बनी बनाई चीज मिलती है? अभी देखो मुरली जब लिखत आती है, तो पहले मुरली के अंदर ऊपर में हेडिंग होती है, माना टोटल इसमें विशेष इस बात पर मुरली है। और फिर उसका प्रश्न आता है, और प्रश्न का उत्तर भी होता है, फिर बैठ के उसी रीति से सारी मुरली पर। तो ये समझो आपको बना बनाया मिलता है। अब इस पर अपना ध्यान दे करके खुद जब मुरली, पहले तो जब हम सुनते हैं इतना ध्यान से सुने जो मुरली की पॉइंट हम नोट कर सकें, उसके लिए हम शुरू में क्या करते थे, जो अभी हम कहते हैं ना हमारे पढ़ाई की चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो कभी कभी हम मुरली का उसी रीति से अलग अलग सेक्शन करते थे कि एक ही मुरली के अंदर हमको चार सब्जेक्ट मिल जाती है, चारों ही सब्जेक्ट आती है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जब हम ध्यान से सुनते हैं, हमें पता चलता है ये ज्ञान की पॉइंट है, माना नॉलेज है। ये योग है जिससे आत्मा कैसे परमात्मा के साथ योग लगाए, मेरा योग सदा बना रहे, कनेक्शन जुटा रहे, उसके लिए क्या क्या विधि बाबा बताते हैं। और धारणा और सेवा वो भी उसे संबंध में। तो कभी कभी मुरली को इन्हीं चारों सब्जेक्ट कैसे मुरली के अंदर है उस ध्यान से सुनो, और कभी कभी मुरली से पॉइंट सुन करके उसको प्रश्न फॉर्म में बना लो। लेकिन ये तब पहले से ही नहीं, पहले तो मुरली को समझने की पूरी कोशिश करो। और अभी आप लोग तो कोई 8 बरस से, कोई 15 बरस से, कोई 6 बरस से, कोई 10 बरस से, माना पुरानी ही है, काफी समय से ज्ञान में चलने वाली है। तो मुरली समझ में तो आ गई है, लेकिन मुरली की धारणा हो, मुरली बुद्धि में मनन होती रहे, मुरली सदा हमें याद हो, और कोई भी आवे तो हम उसको सहज मुरली का सार सुना सकें, उसके लिए ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। अगर इस प्रकार हम मुरली को ध्यान से सुनते हैं, तो मुरली सहज हमारी बुद्धि में याद रह जाती है, और उस पर हमारा मनन ऑटोमेटिकली माना चलते फिरते, उठते बैठते हमारा मनन चलता ही रहता है। अगर चलते फिरते हमारा ऑटोमेटिकली मनन चलता है, तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे कि नेचुरल हमारे अंदर सदा शुद्ध संकल्प चलते रहते हैं, तो फिर व्यर्थ को आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इससे और हमें मदद मिलती है, जब हम योग में बैठे, जब सारा दिन हमारा शुद्ध चिंतन चलता रहता है, मनन चिंतन ही चलता है, तो योग में बैठेंगे तो क्या होगा, जिनकी बातें हमारी बुद्धि में चलती रही उनके साथ बड़ा सहज योग लग जाएगा, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती जाती है, उससे हमें प्राप्ति का अनुभव होता जाता है, उससे हमें कभी कभी ये समझ में आता है ये बात धारणा की बड़ी अच्छी है, और उसको हम थोड़ा धारणा के अभ्यास में ला करके देखते हैं तो उस प्राप्ति का अनुभव होता है, अंदर से खुशी होती है। जब योग में बैठो तो खुशी देने वाला याद रहेगा ना, वो दाता भूलेगा क्या, अपने आप सहज योग लग जाता। तो अगर इस प्रकार हम मुरली को ध्यान से सुने, चलो सुनने समय समझो हम प्रश्न नहीं निकाल सकते हैं, जब तक हमारी ये प्रैक्टिस हो हम मुरली उठा के पढ़ें, क्योंकि जब हम क्लास में मुरली सुनाएंगे तो क्लास में स्टूडेंट्स का अटेंशन मुरली पर रहे, उनको मुरली का रहस्य बुद्धि में बैठे, उनका पूरा ध्यान रहे, उसके लिए मुरली सुनाने के तरीके में भी ये बात अच्छी रहे। आप लोग देखते हैं ना, जब दादी मुरली सुनती है, सुनते होंगे ना जब आते हो मधुबन में, तो पहले, और अभी तो लिखत में ही आता है, पहले प्रश्न पूछते हैं, तो क्या सभी का एक अटेंशन आ जाता है कि मुरली में क्या है। और आप लोग सुनते हैं कि पहले ऐसे भी कभी सुना, आज बाप दादा ने इस पर बताया है, तो थोड़ा सार में थोड़े शब्दों में बता भी देते हैं, और कभी क्वेश्चन रूप में बताते हैं, कभी सार रूप में बताते हैं। तो ये तो मुरली क्लास में कैसे सुनाई जाए उसी के लिए भी ये अच्छा होता है, अगर हम उसमें से 2-3 प्रश्न निकाल देते हैं तो अपने बुद्धि में भी मुरली का सार बड़ा सहज आ जाता है और बताने में भी बड़ा अच्छा रहता है। और इसके लिए जितना हम, क्योंकि स्टूडेंट्स का ध्यान खिंचवाना है, फिर तो है कि क्लास में मुरली को कैसे सुनाया जाए। जब क्लास में सुनाने को जाते हैं तो ये तो मैं समझती हूँ, जो इधर टीचर्स बने, आप लोगों में से भी तो कोई गीता पाठशाला में क्लास कराने जाती है, कभी कोई क्लास में मुरली सुनाते है ना, तो क्या करते हो, मुरली सुनाने के पहले खुद जरूर पढ़ना चाहिए, भले मुरली समझी हुई है, पहले भी पढ़ी हुई होगी, लेकिन फिर भी जब सुनानी है तो उसके पहले जरूर पढ़नी चाहिए। देखो दादी है, इतनी हमेशा की प्रैक्टिस है, तो भी रोज सुबह को पहले मुरली पढ़ती है और फिर आकर के सुनाती, तो पढ़ने से क्या है, उसका सार बुद्धि में आ जाता है, बाबा का सुनाने का महत्व, कितनी नॉलेज, किस क्या क्या सुनाई है, वो मानो महत्व अपने बुद्धि में रहता है, तो उस महत्व से सुनाने वाला जब सुनाता है, कभी खुशी की बात होती है, सुनाने वाला भी जब उस खुशी से सुनाता है तो सुनने वालों में भी वो खुशी की लहर आ जाती है, क्योंकि ये सुनाने वाले पर मदार होता है ना, स्टूडेंट का पूरा ध्यान मुरली पर खिंचवाना, उनके बुद्धि में वो बैठे, उनको अच्छी चीज समझ में आवे, ये सुनाने वाले पर भी मदार होता है। तो हम सुनने वाले भी हैं और सुनाने वाले भी, सुनते भी हैं और फिर मौका मिलता है तो हमें सुनाना भी पड़ता है, तो जब सुनाना पड़ता है तो जब इस रीति से हम सुनाएंगे तो सुनने वालों में उमंग रहेगा, क्योंकि हमें क्लास के स्टूडेंट्स का उमंग भी सदा बना के रखना है। ऐसे नहीं कोई बैठा हो और वो फिर क्लास में ध्यान भी रहता है ना, अभी भी इधर आप लोग करते हैं ना, कोई को सुनते सुनते उबासी आ जाती है, पीछे बैठने वाले सुनते सुनते कभी थोड़े बोर हो जाते हैं, ये तो बातें समझी हुई हैं, क्योंकि कई तो है ना ऐसे जो फिर ऐसे समझते हैं, हमें तो समझी हुई है, चलो भाव समझ लेंगे, थोड़े से भाव समझ लेंगे और फिर अपनी बातों में लग जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, कभी कभी आपस में बातें करने भी लग जाएंगे ना, उससे क्या होगा, टोटल एक तो उस समय, वैसे भी कहा जाता है ना, जिस समय जो काम है उस समय वो करना चाहिए, तो एक तो उनके लिए वो हो जाता है उस समय, जबकि पूरा क्लास चल रहा है और सबका क्लास में ध्यान है और उनका ध्यान क्लास से छूट गया और बात में आ गया, कभी तो आपस में बैठ के बात करने लग जाएंगे, तो इसका जो वायुमंडल में असर पड़ेगा तो सही ना, असर भले आगे वालों का ध्यान है, वो पीछे वाले वो समझे, हमको कौन देखता है ना, हमें कोई देखता है ना, हमारी बात कोई सुनता है, इतने सबके बीच में हम तो पीछे 2-4 आपस में बात कर लेंगे, कोई सुनेगा थोड़े ही, लेकिन वायुमंडल वाइब्रेशन तो जाएंगे ना, क्योंकि अगर 5-6 का बुद्धि योग बदल गया तो वाइब्रेशन नहीं जाएंगे, तो वाइब्रेशंस फैलाना माना वायुमंडल में ये अलग वाइब्रेशंस फैलाना, इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ये भी मानो, भले ऐसी बात को कहा नहीं जाता है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म कर्मों के गति में ये बातें भी आ जाती है। इंसान की अपना बुद्धि योग उस समय के लिए भी तो थोड़ा बदल गया ना, न बाप में रहा न बाप के पराई में रहा, भले समझो हम सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि योग तो नहीं बदली करे ना। अगर बुद्धि योग बदलते हैं, वो हमारे में अपनी एबिलिटी होनी चाहिए। चलो हमको इधर थोड़ी बोरिंग होती है, तो कैसे हम अपने को मेकअप कर ले और अपना उमंग बना के रखें, ये फिर हमारे में या तो अपनी एबिलिटी हो। अगर वो एबिलिटी नहीं है तो फिर हम पूरा ध्यान दें, उधर से उठ करके नजदीक आ जाए तो हमारा ध्यान जाए तो हम थोड़ा ठीक तरह से सुन सके। परंतु अगर हम अपना अटेंशन बदल देते हैं तो अपने लिए भी नुकसान, बाकी उतना टाइम समझो 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, अगर हमारा अटेंशन दूसरे तरफ चला जाता है तो वो बुद्धि योग में तो फर्क पड़ गया ना। एक तो हमारे बुद्धि योग में फर्क पड़ा, दूसरा तो वायुमंडल के अंदर वो वाइब्रेशंस थोड़ा खटखट तो करेंगे ही, और तीसरा फिर उसका पीछा भी चलता है, उसकी पीठ भी होती है, जो फिर हम जल्दी अपने बुद्धि योग को एकाग्र नहीं कर सकेंगे। ये फिर सूक्ष्म हिसाब किताब होते हैं, जिस गति को तो अभी हमने उठाया ही नहीं है, लेकिन अगर हमें इतना ध्यान रहे तो हम इन बातों पर पूरा ध्यान रख करके और अपने को आगे बढ़ाते चलेंगे। और मुरली के संबंध में बात ये कहनी थी कि हम मुरली से, हमें याद है कि जब बाबा मुरली चलाते थे तो कभी कभी बाबा नहीं कहते हैं कि इस पर जाकर के ऐसे लिखो, या कभी ऐसे ही लिखो भी नहीं कहेगा, परंतु इस प्रकार से टॉपिक बाबा बोल देंगे, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए या इस पर बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो जब बाबा मुरली में कोई ऐसी टॉपिक देता है तो अपना काम है मुरली से भी अपने लिए होमवर्क निकालना। और हमें याद है बरोबर कि जब बाबा मुरली चलाते थे, कभी जैसे बाबा ने कहा भाई सर्वव्यापी पर बच्चों को लिखना चाहिए, बाबा ने तो जनरल में बोल दिया, बाबा ये नहीं कहा बच्ची तुम जा करके लिखो, परंतु मुरली चलाते चलाते समझो एक दो पॉइंट समझाई और फिर कहेंगे बच्चों को इस पर लिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, बाबा ने कहा लिखना चाहिए और हम फिर उस पर लिख करके तैयार करके बाबा को देंगे, तो बाबा को खुशी होगी ना। तो देखो बच्चों ने, मैंने कहा, भले बाबा को फिर भूल भी जाए कि मैंने कहा था, लेकिन बच्चों ने ये काम करके दिया तो बाबा को भी खुशी होती है और फिर बाबा उनको आगे बढ़ाता है। और दूसरी बात तो अपने बुद्धि के लिए ये अच्छा होता है कि जो काम बाबा ने बोला वो हम कहाँ तक विस्तार से उसको, इसको फिर कहा जाएगा विचार सागर मंथन, उसी पर हम विस्तार से अपने बुद्धि को चला के और लिखें कितनी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। ऐसे तो बीच बीच में बाबा ने हम बच्चों से कई काम कराए थे, माना ऐसा काम बाबा भी देते थे, 108 पॉइंट्स सिर्फ सर्वव्यापी पर लिख करके आओ, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है उसी पर पूरी ऐसे लिख करके आओ, और फिर उस पर नंबर देंगे। और बाबा ने हम लोगों को नंबर्स दिए थे, पूरा किताब माना इतनी छोटी सी कापी होती है ना, पतली सी, वो हम सब ने लिखी थी, हम जो भी बहने उस समय थी हम सब ने लिखी थी, और बाबा ने खुद उसको चेक करके और फिर हम लोगों को नंबर दिया। तो बाबा हम लोगों से ऐसे काम भी कराते थे, और ऐसा हम अगर मुरली से अपने लिए वर्क निकालते हैं तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि उसमें लगी हुई रहती। ये जो हम कहते हैं ना व्यर्थ संकल्प आते हैं, या कभी साधारण हो जाते हैं, कभी योग लगता है नहीं लगता है, सारा दिन क्या मंथन करे, सारा दिन शुद्ध संकल्प, कुछ ना कुछ और भी चल जाते हैं, और क्यों चलते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि के अंदर वो काम नहीं है। शुद्ध संकल्प कैसे चलाए जाए, शुद्ध संकल्पों का कितना स्टॉक है, और हमारी बुद्धि के अंदर क्या क्या शुद्ध संकल्प भरे हुए है या नहीं है, ये अपने को तभी पता चलता है जब हम उसको वर्क में लाते हैं। तो हम बुद्धि को उस वर्क में ले आए, उससे ऐसे ऐसे जो भी बाबा ऐसा वर्क देता है अपने लिए होमवर्क निकाल करके और अपना टाइम निकाल करके उसको बैठ करके लिखें। अगर शुरू से हम अपने में ऐसा अभ्यास करते हैं, जैसे पढ़ाई के अंदर होमवर्क मिलता है और वो टाइम निकाल करके करते है ना, क्योंकि ध्यान रहता है, होमवर्क मिलता है तो ध्यान रहता है, ये काम करना है ये काम करना है, और सब काम जल्दी जल्दी समेट के काम टाइम निकाल करके फिर उसको लिखते हैं और उसके लिए फिर वो चिंतन चलता रहता है। तो ये एक सहज है अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना, और शुद्ध संकल्प बनाने से फिर शुद्ध संकल्पों का विस्तार होता जाता है, विस्तार होते 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 आखिर हमारी बुद्धि के अंदर शुद्ध संकल्प के सिवाय और कोई संकल्प उठेगा ही नहीं। व्यर्थ संकल्प क्या होता है फिर हमें ये कहना पड़ेगा, व्यर्थ संकल्प क्या होता है हमें पता ही नहीं, व्यर्थ संकल्प हमारे पास आता ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है, शुद्ध संकल्प चलते रहते हैं, उनका स्टॉक इतना है जो व्यर्थ संकल्प आने की जगह ही नहीं, टाइम ही नहीं है उसको। लेकिन सदा इतना शुद्ध संकल्प चलते रहे, इतना स्टॉक हमारे अंदर जमा हो, वो भी हमें इसमें मुरली मदद करती है। मुरली से अगर हम ऐसा वर्क निकाल करके और उस पर चिंतन करते रहें, उसको लिखें, तो हम सदा हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भरता जाएगा। एक तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बढ़ेगा और दूसरा ज्ञान का खजाना कितना बाबा ने हमें दिया है, उसके अंदर कैसे कैसे ऊंचे ते ऊंचे अमूल्य रत्न है, ये हमें खुद परख पड़ेगी और उस परख से हम अपने बुद्धि को भरते जाएंगे, रत्नों से भरते जाएंगे, तो आखिरी हम संपन्न अथवा जिसको कहते हैं ना संतुष्ट मूर्त बन के रहेंगे, क्योंकि भरपूर है ना, संतुष्टता तब रहती है जब संपन्नता है, संपन्नता नहीं तो संतुष्ट कुछ ना कुछ आशाएं बनी रहती हैं। तो संपन्नता जितनी हमारी ज्ञान रत्नों की होती जाएंगी, उतना हमारे लिए धारणा भी सहज होंगी, हमारा बुद्धि योग एकाग्र रहेगा, हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों का खजाना भरा रहेगा और हम व्यर्थ से छूट जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारा योग सदा लगा रहेगा, हमें बुद्धि योग को एकाग्र करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, बल्कि हमारा बुद्धि योग कहां भटकेगा ही नहीं। इतनी सब बातें हमें मुरली से मिलती हैं। अगर मुरली को हम इतने महत्व से समझते हैं, मुरली पर हम इतना ध्यान देते हैं, तो सचमुच देखो कि मुरली ही हमारे जीवन का आधार, मुरली हमारे जीवन का जियापा, जियापा समझते हो, जीने का आधार, नहीं तो जैसे मरा हुआ है। बाबा कहते थे अगर कोई मुरली नहीं सुनता है तो वो क्या बन जाता है, मुर्दे के समान बन जाता है। और देखो अभी ये तो हम लोग अनुभव करते हैं, कोई अगर 2-3 दिन भी मुरली नहीं सुनता है ना तो उसके चेहरे में फर्क आ जाता है, भले कितना भी समझदार हो। देखो हम लोगों को आज कितने वर्ष बीत गए हैं तो भी हमारे लिए ये कंपलसरी है कि हमें रोज मुरली सुननी है। अगर कोई रोज नहीं सुनता है अथवा नहीं पढ़ता है तो उसके लिए क्या समझ में आता है। तो जब इतने वर्ष हमें हो गए है तो भी हमारे लिए मुरली सुनना कंपल, क्योंकि जब भगवान रोज पढ़ाने आता है, वैसे स्थूल रूप से भी देखा जाए, कभी कभी बाबा नहीं कहते हैं कि ये जैसे कि टीचर पढ़ाने आए और स्टूडेंट न बैठे तो ये रिगार्ड हुआ। तो भगवान पढ़ाने आता है रोज और हम न पढ़ें तो भगवान का रिगार्ड हुआ, भगवान का। और भगवान का अगर रिगार्ड नहीं रखा तो क्या होगा, क्या प्राप्ति होगी हमें हा? भगवान का रिगार्ड रखने से ऑटोमेटिक वरदान मिलता है, और न रखेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वरदान नहीं मिलेगा। दूसरा शब्द नहीं बोलती हूँ परंतु इतना ही ठीक है कि वरदान नहीं मिलेगा, वरदान से वंचित रहेंगे। तो वरदान ऑटोमेटिकली हमें बलवान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। अगर वरदान से हम वंचित रहेंगे तो शक्तिशाली न बनेंगे तो कमजोर बने रहेंगे। इसलिए मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार, मुरली ही हमारे जीवन का आधार। और ये भी ठीक है कि मुरली ही श्रीमत है, श्रीमत पर ही हमें कदम कदम चलना है। तो कैसे कदम चलना है ये हमें मुरली से ही पता चलेगा। इसलिए जितना हम मुरली पर ध्यान देंगे उतना हम जीवन में ऊंच बन सकेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। ओम शांति।